चलिए आयत 128 से। जब गज़वे उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ तो आपकी ज़ुबान से कुछ बातें निकली जो आम लोगों के लिए तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आपके नबूवत के मुकाम के मुताबिक ये बातें इस्लाह तलब थी। इस पे अल्लाह सुबहाना तआला ने ये अगली आयतें नाजिल की। आइए देखते हैं। लैसा लका मिनल अम्री शैयुन, ए नबी इस मामले में आपको कोई इख्तियार नहीं। किस मामले में सवाल पैदा होता है? तो जवाब है, औ यतूबा अलैहिम, कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे, औ युअज़्ज़िबहुम, या इनको अजाब दे दे। फ़इन्नहुम ज़ालिमून, बेशक वो कि वो ज़ालिम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये बातें निकल गई थीं कि वो कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। अब इनके तो नसीब में हिदायत नहीं। ये ऐसे जुमला जैसे हम किसी की बेदीनी या बेराहरवी या किसी की केयरलेसनेस देखकर कहते हैं, इसके नसीब में हिदायत नहीं है जी, इसने कोई नहीं सुधरना। यहाँ असल में अल्लाह और बंदे का फ़र्क बताया गया है। नबी नबी है लेकिन अल्लाह नहीं है। किसी को हिदायत देना या ना देना ये अल्लाह ताला का काम है, नबी का काम नहीं है। पता क्या चला कि हिदायत के मामले में अल्लाह ने आपको भी इख्तियार नहीं दिया। गज़वे उहद में आपका दांत शहीद हुआ, आपने फरमाया कि ये कौम कैसे फला पाएगी जिसने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। इस तरह आपने लोगों की हिदायत के मामले में नाउमीदी का इजहार किया। इस पर अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि आपका इख्तियार नहीं है, किसी को हिदायत देना या ना देना ये फैसला हम करेंगे। और याद रखिए कि अल्लाह ताला का नाम अल हादी भी है। इसी तरह आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास कबीलों के लिए कनूत नाजिला का अहतमाम किया जिसमें इनके लिए बददुआ फरमाई, तो उस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई और आपने फिर बददुआ का सिलसिला बंद कर दिया। ये बुखारी की रिवायत है 4560। इसी तरह से सालम बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की दूसरी रकत में हारिस बिन हिशाम, सोहैल बिन अमर और सुफवान बिन उमैया पर लानत भेजते थे, तो ये आयत नाजिल हुई। बुखारी की रिवायत है। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पर बददुआ करना चाहते या किसी के लिए दुआ करना चाहते तो रुकू के बाद कहते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द के बाद, यानी पहले पढ़ते। फिर बाज़ औक़ात आपने ये दुआ भी की कि अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम और अय्याश बिन अबी रबिया को निजात दे, अल्लाह मुजर वालों को सख्ती के साथ पकड़ ले और इनमें ऐसी कहत साली ला जैसी यूसुफ के ज़माने में हुई थी। आप बुलंद आवाज़ से ये दुआ करते और आप नमाज़े फजर की बास रकत में ये दुआ करते, ए अल्लाह फलां फलां और फलां को अपनी रहमत से दूर कर दे। अरब के चंद खास कबाइल के हक में आप ये बददुआ करते, यहाँ तक कि अल्लाह ने यह आयत नाजिल की कि लई सलाका, आपके ऊपर इसका इख्तियार नहीं। ये सब जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया ये सही बुखारी में किताबो तफसीर में मौजूद है। लैसा लका मिनल अम्री शैयुन से क्या मुराद है, या इस बात को सुनकर ईमान वालों के ऊपर क्या असर आता है? तो इसका जवाब क्या है कि अहले ईमान को ये पता चल जाता है कि उनकी ज़ात से फतह नहीं हुई और अहले ईमान के अंदर से तकब्बुर और एहसास बर्तरी तक निकल जाता है। गुरूर, किसी को पकड़ना, इन चीज़ों से इंसान पीछे होता है, क्योंकि जब फतह होती है ना तो उसके नशे में बाज़ दफ़ा ख़तरा क्या होता है कि दूसरे लोगों के ऊपर इंसान जुल्म करने लगे। तो ये एहसास बंदे को बंदा रखता है और रब को रब बनाता है। अल्लाह चाहे तौबा कबूल करे किसी की ना करे, इससे ये भी पता चलता है कि हमें दूसरों के जाहिर पे क्यास करना चाहिए। अंदर बाहर के मामलात अल्लाह पर डाल दीजिए। और ये भी याद रखिए कि नबी सल्लम ने जिन मुशरिकों के हक में ये बद्दुआ की थी, इन्हें अल्लाह ने आपके कदमों में ला डाला और इस्लाम के जानबाज सिपाही बना दिया। तफसीरुल कुरान में ये बात मौजूद है, यानी अल्लाह ने जिनके दिल में खैर देखी उनको मुसलमान कर दिया और जिनके अंदर खैर नहीं थी उनको वापस बुला लिया। तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। हकीकत यह है कि यहाँ जो आखिर में बात हुई ना कि फ़इन्नहुम ज़ालिमून, तो ज़ालिमून के मुशरिकून अल्लाह को भी हक नहीं देते, हकदारों का हक नहीं देते, ना खालिक को पहचानना ना उसकी हस्ती को पहचानना, फिर अपनी ज़िंदगी के मकसद को ना पहचानना जुल्म है। क्योंकि जुल्म क्या होता है, किसी जगह का हक ना देना। तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद था वो हमने छोड़कर दूसरी चीज़ों में खुद को डाल दिया, ये भी जुल्म है। ज़िंदगी की बुनियादी हकीकतों को नहीं मानना और इस तरह से इंसान जुल्म करते करते बंदों पे जुल्म करता है, फिर खुद पे करता है, और फिर बाज़ दफ़ा बेजान चीज़ों पे भी जुल्म करता है। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान तआला हमारे दिलों में खैर डाल दे और हमें बेहतरीन तरीके से दूसरों के हक में अच्छा बनाए। फिर इससे एक और चीज़ पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत थे, इसके बावजूद दीन का नुकसान करने वाले, दीन के निज़ाम में खलल अंदाजियाँ डालने वाले, किसी को दीन से रोकने वाले, इनके हक में आप बददुआ करते थे। और देखिए ये बददुआएं और आहें दिल से निकलती हैं। रहमत वाला होना या नरम दिल होना, इससे ये हरगिज़ नहीं मुराद कि स्माइल ही देते रहो, कोई अच्छा करे तो स्माइल, को बुरा करे तो स्माइल, बल्कि गलत काम पे गुस्से का आना, गज़ब का आना, ईमान की मौजूदगी का इजहार होता है। करना क्या होता है कि बस ऐसे मौके में कोई ऐसी बात जुबान से ना निकल जाए जो फिर अगले के लिए हिदायत की तरफ आने का रास्ता ही रोक ले। फिर एक और आपने चीज़ नोट की इस आयत में कि अल्लाह के नबी मुख्तार कुल नहीं थे। आज लोग कितने आराम से कहते हैं जो अल्लाह चाहे उसका रसूल चाहे, जी अल्लाह और उसके रसूल ने हज पे बुलाया, नहीं अल्लाह अल्लाह है। एक मुहावरा भी है या शेर कह लीजिए ना अरबी का, कि वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का व रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ुल, के बंदा बंदा चाहे ऊपर पहुंच जाए, मेराज की तरफ इशारा है, और रब रब है चाहे पहली ज़मीन के ऊपर आ जाए, पहले आसमान दुनिया पे आ जाए, यानी अल्लाह अल्लाह ही रहेगा, बंदा बंदा है, उसके फ़र्क को नोट करना है। जो अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे आए थे अपनी तकलीफ़ और बेहोशी की कैफियत में, वो क्या थे? कैफ युफ्लिहु कौमुन खदबू वजहा नबीजिहिम बिद्दमी वहुवा यदूहुम इलल्लाह। ये कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी के चेहरे को खून से रंग दिया जबकि वो इन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा था। तो ये बेसाख्ता लफ्ज़ थे, इंसान के दिल से ज़ुबान से निकल आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान और ज़मीन में, कितनी उसकी वसअतें देखिए। यग़फिरु लिमन यशाउ, वो जिसको चाहता है बख्श देता है, व युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको चाहता है अजाब देता है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, यानी इतनी वसतों का मालिक है, इसके बावजूद नरमी करता है। दुनिया में किसी के पास इतने इख्तियारात हों जितने अल्लाह सुबहान तआला के पास हैं, तो दुनिया वालों का जीना दोभर कर दे। अपने आप को इसमें ना रखें, हम अपने ऊपर लें ज़रा सी हमें किसी के ऊपर अथॉरिटी आ जाए, फिर हम अपने आप को कहाँ लेकर चलते हैं, किस तरीके से इंसान अपने आप को लेकर आता है। और ये कैफियत बंदे को बंदा बनाती है कि लिल्लाहि मा फिस समावाती, मेरा तो अपना भी इख्तियार नहीं, मेरे ऊपर तो उसका इख्तियार चलता है। जब उस ज़ात का इतना कुछ है तो मैं भी उसी की बन जाऊँ, इसी में मेरी खैर है। बहुत पैसे वाले के साथ लोग ताल्लुक़ जोड़कर खुद को बड़ा समझते हैं, जिसने पैसे वालों को पैसा दिया, माल वालों को माल दी, शोहरत वालों को शोहरत दी, जब आप उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप खुद कितने बड़े हैं। यहाँ पर एक हिस्सा पूरा हुआ, अब इसके ऊपर कमेंट है। देखिए गज़वे ओहद में जो दर्रे वालों ने जगह छोड़ी थी उसकी बुनियादी वजह क्या बनी? हुब्बे माल, माले गनीमत देख के भूल गए। जैसे आज अच्छी जॉब देखकर बंदा भूल जाता है कि ये नमाज की छुट्टी नहीं देंगे, अच्छी ऑफर देखकर इंसान कई कुरान की कमिटमेंट छोड़ देता है कि पैसे बहुत मिलेंगे। तो अब अगली आयतों में माल की मोहब्बत की बात हो रही है। लिख लीजिए, लोहा नरम देख कर वार किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला ताकुलुर रिबा, सूद ना खाओ, कितना? अदाफम मुदाफा, दुगने का दुगना, मल्टीपल जिसको इंग्लिश में कहेंगे। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डर जाओ अगर तुम चाहते हो कि फलाह पाओ, यानी अल्लाह से क्यों डरो ताकि तुम्हें फलाह हो जाए। यहाँ देखिए कि डायरेक्ट सूद की बात आ गई। बस लोग कहते हैं कुरान की समझ नहीं आती, इधर क्या है उधर क्या है, तो गज़वे ओहद के हालात और वाक़यात के बीच में सूदखोरी की बात क्यों आई? क्योंकि दर्रे पे मामूर लोगों में से अक्सरियत माल की मोहब्बत में जगह छोड़ गए, अपनी जिम्मेदारियाँ भूल गए, उनको याद भी नहीं रहा कि उनको इस वक्त कहाँ होना चाहिए था, उनको अपने लीडर का हुक्म याद नहीं रहा, उसकी हिकमत समझ ना आई। तो अल्लाह ताला ने कहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम माल लेकर फला पा रहे थे, नहीं, तकवा होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, लीडरशिप को वे करोगे, वो उससे ज़्यादा माल तो तुम्हें अल्लाह ताला और भी दे देगा। और यहाँ देखिए जो सूद की बात है ना, अदाफन मुदाफा, मुरक्कब सूद कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, बढ़ते का चढ़ता, और आप देखिए जो सूद की एक किस्त नहीं देते अगले साल वो जमा नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 + 3 = 5 नहीं है बल्कि 2 × 3 = 6 बन जाती है। तो आप देखिए कि शराब और जुए की तरह सूद की हुरमत भी तदरीजन नाजिल हुई, स्टेप बाय स्टेप हुई। हम जो पीछे मक्की सूरत में पढ़ चुके हैं ना आयते, याद है ना आपको, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वहाँ मौजूद है। फिर सूरत रूम में इन्फाक फी सबीलिल्लाह और सूद को एक दूसरे के मुकाबले पर रखा गया, जिससे सूद को बुरा कहा गया। वमा अतई तो मिर रिबल ली यरबू फी अमवाल इन्नास फला यरबू इंदल्ला, कि जो कुछ तुम सूद देते हो ताकि लोगों के माल में बढ़ जाए तो वो तो नहीं बढ़ता अल्लाह की नज़र में। हाँ वमा अतई तो मिन ज़कात इन तुरीदू न बजखल्ला ही फौलाई का हमुल मदे फोन, हाँ जो कोई ज़कात तुम देते हो अल्लाह की रजा के लिए फिर वही बढ़ने वाली है। सूरह बकरा की आयत 219 में भी यही बात हुई, शराब और जुए की खराबी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा सूद का तذکرہ कर कर जहन बना दी। महाजनी सूद कहते हैं यूजरी को, जो अक्सर लोगों को बहुत बड़ी सूद पर कर्ज दिया जाता है, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होता है। और आखिरी हुक्म सूद का जो है वो सन 9 हिजरी में नाजिल होता है। तो आप कह सकते हैं कि तरतीब मुसफ में सूरह बकरा में जो पहले आया है ना वो बाद में नाजिल हुआ था, लेकिन उसका तस्करा पहले आ गया शायद उसकी शिद्दत की वजह से। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें माल की मोहब्बत और इसमें पढ़ने से बचाए और हमें नेकियों की मोहब्बत अता कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बात करके आगे आपको मुझे क्या इशारा किया कि देखो वत्तकुन्नार अल्लती उद्दत लिल काफिरीन, और इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई। पहला काम क्या था, अगर आप यहाँ से डूज एंड डोंट्स लिखेंगे तो पहला डोंट क्या था, ला ताकुलु रिबा अदाफा मुदाफा। अब डूज में क्या है, वत्तकुन्नार अल्लती उद्दत लिल काफिरीन, उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तीसरा हुक्म वातीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ग़ज़वे उहद में अतीउर रसूल से हट गए थे। देखिए बाज़ दफ़ा हमारी अक्ल कुछ और सुझाती है लेकिन हिकमत और तकाजा कुछ और होता है। छोटी सी मिसाल आप लोगों की देती हूँ कि आजकल आपको पता है कि नमाज का वक्त कैसे साथ साथ चल रहा होता है। फ़र्ज पढ़कर जमात के साथ आपको कहा जाता है कि आप ब्रेक का खाना ले लें ताकि हम सब ब्रेक बाद में यूज़ कर लें। मुझे पूरा यकीन है इस वक्त भी अंदर किसी कोने खुदरे में कोई बैठा अपनी नफिल या सुन्नतें पढ़ रहा होगा। उसने अपनी अकल से कुछ और सोचा, क्योंकि हमने बचपन से ही सुना ही है कि 12 रकत जोहर इकट्ठी ही पढ़नी है, सजदे पे सजदा देना है, कमर सीधी करनी है नहीं करनी, फ़र्ज पूरा करना है, क्योंकि 12 इकट्ठे पढ़ने हैं जिसमें फ़र्ज भी है सुन्नतें भी हैं नफिल भी है। हमारा दिल ही नहीं अभी तक मान रहा कि फ़र्ज और चीज़ है, सुन्नत और है नफिल और है। पढ़े कोई हरज नहीं, बट कुरान क्लास का सबक छोड़ के अगर आप अंदर जाके खाना ही खा रहे हैं अभी तक, या आप अब घर ही चले गए हैं तो ये आयतें तो कुरान से निकल गई। आपको तो ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं ना, वल्ला ही ये एक पूरा पैकेज है जन्नत में जाने वालों का। अतात क्या होती है कि बात पर ट्रस्ट तो किया जाए, एतमाद किया जाता है। जब सिस्टम में चंद लोग अपनी मर्जी के काम करें, कुछ अपनी मर्जी के करें, आप बताएं वो फ्लाइट चलेगी, बस मैं ही तो 10 मिनट लेट हुई हूँ तो सारे वो 120 पैसेंजर भी आपके इंतज़ार में जहाज़ में नहीं बैठ सके, और बैठे हैं तो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा हमारी मर्जियों की वजह से सारे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। तो हमेशा अपने लिए कसूल बनाएं, मेरी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। और याद रखें दीवार की एक ईंट जब तक अपनी जगह पर ना लगी हो दूसरी उस पर नहीं लगती। 5 मिनट में लेट होती हूँ बस, तो ये 5 मिनट थोड़े हैं, आप बस 5 मिनट ही तो पहले जाती हैं ताकि जल्दी से अपनी जूती भी ले लूँ, आप स्टक ना हो मैं निकल जाऊँ, तो सारी 5 मिनट निकल जाएंगे तो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल का तकाजा तो पूरा नहीं होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरबियत की हैं और रहम भी उन पर ही होता है। कितना को बचा लेते हैं वक्त, यकीन करें 5 मिनट पहले आप यहाँ से निकलेंगे 10 मिनट आप नीचे स्टक रहेंगे, अल्लाह को पता जल्दी पहुँच जाएंगे वो काम, फिर भी कोई नहीं होना, दिमाग पे हम सवार करते हैं और इतना कीमती कुरान छोड़ जाते हैं। या बाज़ दफ़ा हमारी नमाजें लेट होती हैं, बस ये साफ कर लूँ, काउंटर साफ कर लूँ, अच्छा ज़रा बर्तन भी निकाल दूँ, अच्छा ज़रा अगले बर्तन डाल दूँ, चलो इसमें पाउडर डाल दूँ, वो इतने में आपकी जोहर असर मगरिब चल पड़ती है। दो दो कट्ठी घर में पढ़ें कोई हर्ज नहीं, दीन के किसी काम में ज़रा सा भी नमाज में 5 मिनट आगे पीछे हो तो हमारे दिल में शैतान डालता, लो मेरे कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर मैंने अभी जोहर ही नहीं पढ़ी। हालांकि जोहर का वक्त सबसे ज़्यादा देर तक होता है, असर के शुरू होने से पहले पहले तक का वक्त तो जोहर का ही है, जब मर्जी पढ़ लें। मैं ये नहीं कह रही कि आम हालात में ऐसा करें, पढ़े नमाज वक्त पे, बट समझाने का मकसद है कि नबी ने कहा था दर्रा नहीं छोड़ना, तो वो अगर उनसे कोई पूछे आज हमारे जैसे होते दलीलें देते, एक तो मसला कि हमारे पास दलाइल भी बहुत हैं, सहाबा का कोई एक दलील या दलाइल नहीं कुरान का आपको मिलेगा या हदीस का कि वो 40 लोगों ने कोई एक दलील दी हो कि जी ये वो, आपने तो खुद ही कह दिया, आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी, आप बताते ही कुछ नहीं है। तो याद रखिए, लोगों के गिरोह को साथ लेकर चलना बहुत बड़ा काम है। इसके लिए फिर कुछ और खूबियों का तज़किरा है जिसका आगे फरमाया, चार पहले हुई या पांचवी है, आयत 133, बस सारी उला मगफिरत मिर रब्बिकुम, और मुसाबकत करो अपने रब की मगफरत के हसूल के लिए। भागना चाहते हो, भाग दौड़ है तुम्हारी जिंदगी में, यू वॉन्ट टू रन फास्ट, तो फिर किस में भागो कि मेरा रब मुझे माफ कर दे। और भागना है तो वह जन्नत नरदुहस समावातु वल अर्थ, उस जन्नत की तरफ भागो जिसका फैलाओ या उसकी कीमत आसमानों और जमीन जितना है। किसके लिए तैयार हुई है? तो जवाब दिया, उद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए तैयार हुई है। चार काम पिछली आयतों में कर दिए, माल की मोहब्बत ना रखो, सूद ना खाओ, दुगने तिगने ना करो, फिर उसके बाद अतीउल्लाह और अतीउ रसूल की बात की, फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह का खौफ और तकवा इख्तियार करने की बात हुई, फिर अब यहाँ जो भाग दौड़ की बात है कि तुम्हारी सारी भाग दौड़ का मकसद क्या हो कि अल्लाह के कामों को, अल्लाह की जात को प्रायोरिटाइज करो, अपने आगे रखो। ये वो भाग दौड़ है जो मतलूब है, और सहाबा को यही भाग दौड़ लगी हुई थी, इधर भी नेकी ले लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये करूँ, वो करूँ। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला कहते हैं, कुरान पाक में ये आयत सबसे ज्यादा खौफ दिलाने वाली है कि अगर मुसलमानों ने तकवा की राह इख्तियार ना की तो उस आग का सामना करना पड़ेगा जो काफिरों के लिए तैयार की गई। उद्दत लिल काफिरीन, यानी आग बुनियादी तौर पे तो काफिरों के लिए बनाई गई थी, बट कुछ मुसलमानों को शौक है उसमें गुजरने का, उसमें गिरने का। तो याद रखे, ये पीछे से आयतें सूद के साथ ही चल रही हैं, और बीच के ये सारे अमल। ईमान और सूद का निज़ाम एक जगह नहीं रह सकता, ये माशरे की आग है, जहन्नुम की आग ऐसे लोगों का मुकद्दर होगी। मोमिनों को कहा जा रहा है कि तुमने अगर वही काम किए जो कुफार करते हैं तो फिर तुम सोच लो। और आप देखिए, दो दफ़ा तकवा का जिक्र है इस एंगल में, तो एक दफ़ा कह दिया कि तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पाओ, फिर का आग से डर जाओ, तो उम्मीद भी है, छोड़ दोगे तो अल्लाह बचा लेगा, डर जाओगे अल्लाह हाथ थाम लेगा, जहन्नुम से बचोगे अल्लाह बचा लेगा, लेकिन अगर तुमने फिर भी वही काम किए जो कर रहे हो तो याद रखो ये चीज़ें तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगी। अब मुत्तकियों के लिए जन्नत है। सवाल पैदा होता है कि मुत्तकी कौन होता है? लिख ले मेरा नाम, बस मैं मुत्तकी और आप मुत्तकी, बस दो काफ़ी हैं। नहीं, अल्लाह ने लिस्ट तैयार कर दी है, आप ज़रा एंड तक चलिएगा, आपके सामने एक लिस्ट आएगी कि भाग दौड़ जिस जन्नत की तरफ करनी है उसको पाने वाले लोगों की खूबियां क्या हैं। और सैयद बिन जुबैर कहते हैं, सारी उसे मुराद है नेक अमाल में जल्दी करो, उस चीज़ की तरफ जल्दी करो जो मग़फ़रत का हक मुस्तहक बना दे, जैसे इस्लाम, तौबा और इखलास। अबू हुरैरा कहते हैं, तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितनों के वाक़े होने से पहले तुम नेक अमाल की जल्दी करो, सुबह को आदमी ईमानदार होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को ईमानदार होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा, लोग दीन को दुनिया के सामान की खातिर फरोख्त कर देंगे। तिरमिज़ी की रिवायत है। अबू सरुआ उकबा बिन हारिस कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीने में असर की नमाज़ पढ़ी, बस आपने सलाम फेरा और नहायत तेज़ी से उठ खड़े हुए और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। लोग आपकी इस तेज़ रफ्तारी से घबरा गए। थोड़ी देर बाद आप तशरीफ़ लाए तो देखा लोग आपकी तेज़ रफ्तारी पर ताज्जुब कर रहे हैं। आपने फरमाया, मुझे याद आया कि हमारे पास घर में सोने या चांदी की डल्ली का कुछ हिस्सा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये डल्ली मुझे अल्लाह की याद से रोक दे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाकर इसको तकसीम करने का हुक्म दे आया हूँ। ये बुखारी की रिवायत है। ये असारी ला मगफिरत है और जन्नत है। जाबिर कहते हैं कि उन्होंने बयान किया कि एक सहाबी ने नबी सल्लम से गज़वे अहद के मौके पर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊँ तो कहाँ जाऊँगा? आपने फरमाया, जन्नत में। उन्होंने खजूर फेंक दी जो इनके हाथ में थी और लड़ने लगे यहाँ तक कि शहीद हो गए। कि अच्छा, जन्नत में जाऊँगा तो फिर वक्त क्यों ज़ाया करूँ? ये बुखारी की रिवायत है। अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गज़वे अहद के दिन एक तलवार लेकर फरमाया, मुझसे ये तलवार कौन लेगा? सहाबा ने अपने हाथों को ये कहते हुए आगे किया कि मैं यानी मैं लूँगा। आपने कहा, मैं उसको दूंगा जो इसका हक पूरा करेगा, ये शर्त है। صحابہ پیچھے ہو گئے، کہا اچھا اللہ کے نبی اس کا حق کیا؟ اس پہ ابو دجانہ آگے آئے، کہا میں اس کا حق ادا کرنے کی شرط پہ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کا حق کیا کہ اس کو دشمن سے لڑتے لڑتے توڑ دو. اور انہوں نے وہ تلوار لی اور اس کے ساتھ مشرکوں کی کھوپڑیاں پھوڑ دیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو جن کو نیکیاں کرنی ہوتی ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ بس چل پڑتے ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کرنے لگتے ہیں. سورہ بقرہ میں کیا پڑھ چکے ہم، فاستبقوا الخیرات، 148 تھا نا دوسرے پارے کے شروع میں. اسی طرح سورت متففین آیت 26 میں آتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی ہے. آج ہماری رغبت کس میں ہے؟ آج ہماری بھاگ دوڑ کس چیز میں ہے؟ آج ہم کس چیز میں بڑھنے کے لیے دن رات بھاگتے ہیں؟ کیا اردہ السماوات والارض والی جنت کے، یا اس دنیا حقیر دنی؟ آپ دیکھیے کل کے حادثے میں جو لوگ گئے، اگر وہ کروڑ پتی بھی تھے، کدھر گئے؟ کس کے کام آئے؟ ہم ساری زندگی جمع کرتے رہتے ہیں بچوں کے، بڑوں کے، اور کردار نہیں بناتے. سورت حدید آئی 21 میں بھی آتا ہے سابق الا مغفرت میں ربکم و جنت اردہ کرد سمائی والارض، اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے. مسند احمد میں کہ ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک سوال بھیجا، کیا آپ مجھے جنت کی دعوت دیتے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے؟ تو فرمائیے پھر جہنم کدھر ہے؟ یعنی جنت اتنی بڑی ہے تو پھر جہنم کدھر ہوگی؟ تو فرمائیے بتاؤ جب دن آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے والا بنا دے. انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آیتیں بہت ہی خوبصورت ہیں. خلاصہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے پورا، لیکن پھر وہ اس خلاصے کو کر کے بعض دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس کافی ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت 133 سے ہی کل ہم اگلے سبق کو لیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو ماننے والا اور اس پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے. حقیقت ہے کہ کمی بہت ہے، اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء شاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.